समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे। चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है उनके पास खास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी। उन विशिष्ट व्यक्तियों की भी हम बात करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि है या है जन्मदिवस। आज के इस अंक के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो मुकेश, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू अ न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय, विद मी टुडे इज माय को-होस्ट मुकेश कुमार। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर फॉर आवर लिसनर्स टुडे। ऑल दिस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा से कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। देश भर के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर 18 भारतीय जन औषधि केंद्रों का भी शुभारंभ।
ओवर 59% वोटिंग रिकॉर्डेड टिल 3 PM इन द फर्स्ट फेज ऑफ झारखंड असेंबली इलेक्शंस। 43 कंस्टिट्यूएंसी स्प्रेड ओवर 15 डिस्ट्रिक्ट्स आर अंडर दिस फेज। पोलिंग बिगैन एट 7 AM एंड विल कंक्लूड एट 5 PM एक्सेप्ट एट 950 सेंसिटिव बूथ्स इन 31 कंस्टिट्यूएंसीज वेयर पोलिंग कंक्लूडेड एट 4 PM।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं का समर्थन जुटाने के प्रयास में जुटे।
प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एम्फसाइजेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस टू अचीव विजन ऑफ डेवलप्ड इंडिया।
सर्वोच्च न्यायालय ने संपत्ति विध्वंस पर समूचे देश के लिए दिशा निर्देश जारी किए। उचित प्राधिकार के बिना किसी भी संपत्ति के विध्वंस को मनमानी कार्रवाई समझा जाएगा।
एंड इन बैडमिंटन, पीवी सिंधु एडवांसेस टू द वुमेन सिंगल्स राउंड ऑफ 16 एट कुमामोटो मास्टर्स टूर्नामेंट इन जापान। And now, Mukesh, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about Jan Aushadhi and International Apparel and Textile Fair. Well, to start off with the first topic of the day, that is the Jan Aushadhi. Prime Minister Narendra Modi today dedicated 18 Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi Kendras at various railway stations across the country. And Mr. Modi inaugurated these Kendras through video conferencing from Darbhanga in Bihar, along with other developmental projects worth over 12,000 crore rupees. And these Kendras will ensure availability of affordable medicines at railway stations for the passengers. And speaking on this occasion, the Prime Minister said his government has main focus on holistic health services in the country. Mr. Modi said, we have 5 focus points, including prevention from diseases, affordable screening of ailments, use of technology in treatment, and providing best healthcare services for the well-being of the common people.
बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि मौजूदा सरकार बीमारियों की रोकथाम में विश्वास करती है, इसलिए फिट इंडिया और स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में 75,000 नई मेडिकल सीट जोड़ी जाएंगी।
हमारा पहला फोकस बीमारी से बचाव पर है, दूसरा फोकस बीमारी की सही तरीके से जांच पर है, तीसरा फोकस है लोगों को मुफ्त और सस्ता इलाज मिले और सस्ती दवाएं मिले, हमारा चौथा फोकस है छोटे शहरों में भी इलाज की बेहतरीन सुविधाएं पहुंचाना, देश में डॉक्टरों की कमी को दूर करना, और हमारा पांचवा फोकस है स्वास्थ्य सेवाओं में टेक्नोलॉजी का विस्तार करना।
He said government has taken decision to impart medical education in Hindi and other Indian languages.
हमारी सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है, हम हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में भी मेडिकल की पढ़ाई का विकल्प दे रहे हैं। मकसद यही है कि गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवार की संतान भी डॉक्टर बन सके।
मिस्टर मोदी ऑल्सो सेड ओवर 1,50,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैव बीन ओपन इन द कंट्री फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। Prime Minister said yoga, ayush and nutrition have been integrated to strengthen health services with promotion of better lifestyle. He said the Ayushman Bharat and PM Jan Aushadhi schemes have thoroughly changed the earlier orthodox system.
श्री मोदी ने समारोह में मंच से प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
Now moving on to a second topic in a Dateline segment for the day, that is IATF Dubai. An India showcasing a finest weaves at the International Apparel and Textile Fair IATF at Festival Arena Dubai, presenting a wide array of high quality fabrics and presenting its unmatched textile expertise. With a strong delegation of manufacturers, designers and artisans, the country highlighted its rich heritage and modern capabilities in textile production.
जी हाँ अभिषेक, पारंपरिक हथकरघा उत्पादों से लेकर नवीन टिकाऊ वस्त्रों तक भारत के प्रदर्शन ने वैश्विक वस्त्र उद्योग में इसके नेतृत्व पर बल दिया है। दुबई में भारत की अग्रणी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, हथकरघा निर्यात प्रोत्साहन परिषद और ऊन निर्यात प्रोत्साहन परिषद अंतर्राष्ट्रीय परिधान और वस्त्र मेले के 18वें संस्करण में 50 से अधिक भारतीय कपड़ा निर्यातकों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। इस वर्ष मेले की 10वीं वर्षगांठ है।
Yes, Mukesh, and the AHEPC promotes India's rich handloom heritage and diverse handcrafted textile products through international trade events, while the WWEPC bolsters the country's wool and woolen exports by expanding market reach and ensuring compliance with global standards. And both councils play a vital role in enhancing India's textile exports.
मेले में 450 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी नवीनतम शरद ऋतु की यानी सर्दियों के 2025 और वसंत ग्रीष्म ऋतु 2025 संग्रह सहित परिधान, कपड़े, प्रिंट, घरेलू वस्त्र, सहायक उपकरण, जूते और बहुत कुछ चीजों के विविध मिश्रण का प्रदर्शन करेंगे। ये मेला खाड़ी क्षेत्र के शैली परिदृश्य को आकार देते हुए ट्रेंड सेटिंग और उत्कृष्टता की सोर्सिंग के केंद्र के रूप में कार्य करता है। द्विवार्षिक 3 दिवसीय मेले का समापन 14 नवंबर को होगा।
Yes, and India's textile industry holds immense economic significance, contributing 2% of the country's GDP and making it the third largest textile exporter globally. The sector is a major employer with over 45 million people in the workforce, largely powered by women. And India's textile and apparel market is valued at $176 billion, with $139 billion in the domestic market and $37 billion in exports. And looking ahead, India's textile and apparel market is projected to reach $350 billion by 2030. And also, Mukesh, the country is the second largest producer of cotton, polyester, viscose and silk with a 4.5% share in the global textile and apparel trade.
और श्रोताओं, परिक्रमा कार्यक्रम में अब समय हुआ है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि उनके पास क्या कुछ खास है।
Yes, and the Department of Tourism Union Territory of Ladakh has recently approved the much awaited Ladakh Mountaineering Policy 2024. Let's know more about it from a correspondent.
Ladakh, with its stunning high peaks and long captivated adventurers and mountaineers from across the globe. The challenging topography and beautiful landscape of Ladakh motivate climbers globally by providing an array of mountains to climb, which ranges at different altitude levels. The vision of the policy is to foster thriving and sustainable mountaineering activities in the Union Territory of Ladakh that benefits the local communities and preserves the natural environment. The policy will address the need for regulations, proper training and accreditation for mountaineering tour operators. It will also manage guides, permissions and emergency responses. Through the implementation of the policy, Tourism Department aims to promote supportive mountaineering and protect the natural heritage. This policy will also enhance the overall experiences for both the climbers and the local community. For Parikarma, this is Khurshid Yusuf from Leh Ladakh.
और लद्दाख से अब चलते हैं उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जनवरी 2025 में शुरू होने वाले महाकुंभ में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचेंगे। अभिषेक, आप जाएंगे क्या? बिल्कुल ऐसे में जी बिल्कुल मैं भी जाऊंगा और ऐसे में इन जो श्रद्धालु आएंगे उनको यादगार अनुभव देने के लिए सरकार की ओर से कई विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। महाकुंभ में आने वाले विदेशी मेहमानों के लिए संगम के किनारे टेंट सिटी बनाई जा रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में तैयार हो रहे आध्यात्मिक सर्किट अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज के लिए विशेष पैकेज तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही कई जगहों से प्रयागराज से हेलीकॉप्टर सेवाएं भी शुरू की जाएंगी। तो सुनते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
प्रयागराज में जनवरी 2025 में होने वाले महाकुंभ में आने वाले विदेशी पर्यटकों को एक अनोखा अनुभव देने के लिए पर्यटन विभाग विशेष तैयारी कर रहा है। उत्तर प्रदेश पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश कुमार मेश्राम ने बताया कि महाकुंभ में आने वाले विदेशी पर्यटक संगम किनारे रुककर भारत की संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव कर पाएंगे। इस टेंट सिटी में 2500 से अधिक टेंट लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रयागराज में करीब 2000 होम स्टे भी विकसित किए जा रहे हैं।
विदेशियों के पर्यटकों के लिए टेंट सिटी विकसित की जा रही है। इसमें 2500 टेंट्स बनाए जा रहे हैं जिसमें आराम से 2 या 3 व्यक्ति प्रति टेंट रह सकते हैं। होम स्टे की भी सुविधा वहां पर विकसित की जा रही है, 2000 होम स्टे पूरे प्रयागराज सिटी में, ताकि लोग परिवारजन के साथ भी रुक सकें, भारतीय संस्कृति को महसूस कर सकें, उनका खान पान, उनका रहना। खासतौर पर जब लोग बाहर जाते हैं, विदेशी लोग, तो वो वहां की संस्कृति, वहां के खान पान से भी जुड़ना पसंद करते हैं।
प्रमुख सचिव श्री मेश्राम ने बताया कि संगम के साथ ही यहाँ आने वाले श्रद्धालु वाराणसी और अयोध्या का भी भ्रमण कर सकें, इसके लिए आध्यात्मिक सर्किट को ध्यान में रखते हुए खास पैकेज तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही इन जगहों को हेलीकॉप्टर सेवा से भी जोड़ा जा रहा है।
हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी हम संगम तक के संचालित करेंगे, अलग अलग जगहों से, वाराणसी से, अयोध्या से, लखनऊ से, नैमिषारण्य से। इसके अलावा वहां पर कई तरीके के वाटर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज, अलग अलग दिनों में वहां पे जो सुविधाएं हैं लोगों को कैसे दे, फूड कोर्ट्स स्थापित किए जाएंगे कई सारे, और टूर पैकेज है कुंभ का टूर, अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज, तीनों को मिला करके एक बहुत ही बढ़िया लोगों की आध्यात्मिक सर्किट का वो भ्रमण कर सकते हैं। कुल मिलाकर के महाकुंभ को ग्रीन कुंभ, डिजिटल कुंभ, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एक बेहतर तरीके से स्थापित करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं।
प्रयागराज में जनवरी 2025 में शुरू होने वाला महाकुंभ सिर्फ आस्था और संस्कृत का संगम ही नहीं होगा, बल्कि यह उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर पेश करने का काम भी करेगा। प्रदेश सरकार के लिए यह आयोजन उत्तर प्रदेश को पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में प्रस्तुत करने का भी मौका होगा। यही वजह है इसकी तैयारी में सरकार कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। परिक्रमा के लिए ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
और अभिषेक, अब अपने श्रोताओं को वापस ले आते हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश से। और दिल्ली में अपने श्रोताओं को बताएं कि 43वां अंतर्राष्ट्रीय भारत व्यापार अंतर्राष्ट्रीय मेला जो है कल से नई दिल्ली के भारत मंडप में शुरू होगा।
यस मुकेश, द 43rd एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF विल बिगिन एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली टुमारो, एंड द थीम ऑफ दिस ईयर्स फेयर इज विकसित भारत इन 2047, एंड द फोकस स्टेट दिस ईयर इज ऑफ कोर्स झारखंड, while Bihar and Uttar Pradesh are the partner states. We have more from a correspondent, Bhanu.
This year, 8 countries including China, Egypt, Iran, South Korea, Thailand, Turkey and UAE are participating in the much-awaited international fair. The fair will be open for business trade for the first 5 days starting tomorrow till the 18th. Thereafter, it will be open to the general public till the 27th of November. During the business days, the ticket for adults will cost 500 rupees, whereas for children, the ticket is priced at 200 rupees on weekends, including gazetted holidays. For non-weekend, the tickets will cost 150 rupees. On the non-business days, the tickets for adults will be 150 rupees on the weekend, and for the weekdays, the prices will be 80 rupees. The tickets for children will cost 60 rupees during the weekend and 40 rupees on the weekdays. Besides, the entry will be free for senior citizens and specially abled during both business and non-business days. The fair will be open from 10 a.m. to 7:30 p.m. For Parikrama, Bhanu Pratap Singh.
और अब चलते हैं राजस्थान। राजस्थान के अजमेर के पास चल रहे सुप्रसिद्ध पुष्कर मेले में कल कार्तिक मास की देवठानी एकादशी से धार्मिक पुष्कर मेला शुरू हो गया है। आगामी 15 नवंबर को यानी कार्तिक पूर्णिमा तक लाखों श्रद्धालु पुष्कर सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर पंचतीर्थ महास्नान करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
पुष्कर मेले का धार्मिक स्नान कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा तिथि तक 5 दिनों तक होता है, लेकिन इस बार चतुर्दशी तिथि क्षय होने के कारण यह पंचतीर्थ स्नान 4 दिनों का ही होगा। इन 5 दिनों की अवधि में पुष्कर सरोवर के 52 घाटों पर संतों महंतों के डेरे लगे रहेंगे। पुष्कर सरोवर में कार्तिक माह में स्नान के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मुख्य घाटों पर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। पुष्कर सरोवर के घाटों पर पर्याप्त रोशनी और सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि हर साल भरने वाला पुष्कर मेला देशी विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होता है और यहाँ पर हर साल लाखों श्रद्धालु और पर्यटक पहुँचते हैं। परिक्रमा के लिए जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट।
और अभिषेक, अब अपने श्रोताओं को ले चलते हैं दार्जिलिंग। जी हाँ, दार्जिलिंग के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चौरस्ता में आज से 11 दिन का सरस मेला शुरू हुआ है, तो सुनते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने आज अपराह्न 3 बजे इसका विधिवत उद्घाटन किया। इस उद्घाटन के अवसर पर राज्य के पंचायती एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के विशेष सचिव IAS श्रीमती कुहुक भूषण, राज्य के विद्युत आवास युवा व खेल विभाग के प्रभारी मंत्री अरूप विश्वास, सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देव, गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन के प्रमुख कार्यपाल अनित थापा लगायत कईयन विधायक नेता उपस्थित थे। केंद्र सरकार के पंचायती तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था के इस योजना को विभिन्न राज्य के संबंधित मंत्रालय व विभाग प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन करते हैं। दार्जिलिंग में इस मेले का यह 7वां आयोजन है। इस मेले का उद्देश्य ग्रामीण स्तर के कारीगरों द्वारा बनाई गई वस्तुओं के खरीद बिक्री को प्रोत्साहित करना है। इस मेले में 100 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें ग्रामीण कारीगरों द्वारा बनाई गई कई वस्तुएं प्रमुख आकर्षण के केंद्र हैं। यह मेला सुबह 10 बजे से संध्या 8 बजे तक चलेगा। मेला 24 नवंबर को समाप्त होगा। राज्य की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी 11 नवंबर को शाम से ही दार्जिलिंग के 4 दिवसीय भ्रमण पर हैं। कल उन्होंने गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन के जन प्रतिनिधियों तथा पदाधिकारियों एवं विभिन्न जात गोष्ठी के बोर्ड अध्यक्षों से बैठक की। बैठक में दार्जिलिंग पहाड़ के विकास व कुछ समस्याओं पर चर्चा हुई, जिनमें दार्जिलिंग में नया कार पार्किंग, वैकल्पिक मार्ग, भूमि पट्टा तथा कौशल विकास, जातिगत बोर्डों के पुनर्गठन मुख्य रूप से शामिल थे। मुख्यमंत्री आज दार्जिलिंग पहाड़ के विकास संबंधित कई परियोजनाओं की घोषणा कर सकती हैं। परिक्रमा के लिए अशोक चौरसिया, आकाशवाणी कर्शियंग।
आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम परिक्रमा, मुकेश कुमार और अभिषेक मुखोपाध्याय से। और अब कार्यक्रम में वक्त हुआ है व्यापार जगत के हलचल का।
बिफोर दैट मुकेश, लेट्स टेक अ टूर ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एंड रिकॉल इवेंट्स दैट हैपेंड ऑन दिस डे।
13th नवंबर इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ कालोजी नारायण राव। कालोजी वॉज बोर्न ऑन द 9th ऑफ सितंबर 1914 इन बीजापुर। कालोजीज एल्डर ब्रदर, हु वॉज एन उर्दू पोएट, played an important role in shaping his personality. Although he studied Telugu from an early age, he also wrote poetry in Marathi, Kannada, Hindi and Urdu. During his student days and later, he was deeply influenced by and participated in popular movements of the time, like the Ardra Samaj, Andhra Mahasabha activities.
Being a social reformer, Kaloji created awareness among the people of Telangana with his poetry. He gave the slogan of
"Birth is yours, death is yours, but life is meant for the country."
An ardent fan of Mahatma Gandhi and Jai Prakash Narayan, Kaloji took an active part in Satyagraha and the library movement, which intended to spread literary and reading culture among the masses since the early 1930s. In his poetry collection, Na Godava, My Protest, Kaloji provides a framework for his life, literature and activism throughout.
He also wrote fervently against the Nizam's autocratic rule. Kaloji was imprisoned by the Nizam of Hyderabad for his active participation in the freedom movement of Hyderabad state.
Kaloji was a member of the Andhra Pradesh Legislative Assembly during 1958 to 1960. He was awarded the Padma Vibhushan in 1992.
I am today's reality, yesterday's dream, and tomorrow's memory,
wrote Kaloji, who passed away in 2002. His body was donated to Kakatiya Medical College in Warangal for research according to his wish. The Telangana government honored Kaloji's birthday as Telangana Language Day.
I did not enter the field of literature to become a great poet or to write great epics. I was anyway giving speeches as part of movements, but realized that a poem would be more effective than several speeches. In present times, I am penning my anguish, or Na Godava. It is also a reflection of the society.
Today we will talk about Minjur Bhaktavatsalam, who was born on 9th of October 1897 in the Madras Presidency. He studied law and practiced as an advocate in the Madras High Court. He involved himself in the freedom movement right from an early age.
Bhaktavatsalam joined the Indian Independence Movement event during graduation. He joined the Indian National Congress and became a member of the Madras Provincial Congress Committee in 1922.
Bhaktavatsalam started the daily newspaper India, which he managed till 1933.
He was injured during the salt satyagraha at Vedaranyam. He was arrested in 1932 for conducting India's Independence Day celebrations and spent 6 months in prison.
In the 1936 municipal body elections, Bhaktavatsalam was elected to the Madras City Corporation and served as deputy mayor. At the age of 40, Bhaktavatsalam entered the Madras Assembly, successfully winning the Tiruvallur seat in 1937 election. Bhaktavatsalam participated in the Quit India movement agitations and was jailed by the British.
He led the Indian National Congress during the 1950s and served as the Chief Minister of present-day Tamil Nadu, the Madras Presidency from 1963 to 1967. Following the defeat of the Indian National Congress in 1967 elections, Bhaktavatsalam partially retired from politics.
He died on 13th of February 1987 at the age of 89.
In business news today, domestic benchmark indices Nifty and Sensex deepened the slump today, marking the fifth consecutive day of loss. Both indices recorded the steepest drops in 5 months in early trade, with broad-based sectoral sell-off amplifying the slide. At close, Sensex was down 984 points, or 1.25%, at 77,691, and the Nifty dipped 324 points, or 1.36%, at 23,559.
और खेल जगत की हलचल के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी धर्मेंद्र के पास।
भारत और मेजबान दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज सेंचुरियन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। चार मैच की श्रृंखला में अभी दोनों टीमें एक-एक की बराबरी पर हैं। पहले मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 61 रन से हराया था। दूसरा मैच मेजबान टीम ने 3 विकेट से जीता था। श्रृंखला का चौथा और अंतिम मैच शुक्रवार को जोहान्सबर्ग के वैंडरर्स स्टेडियम में खेला जाएगा। बैडमिंटन में पीवी सिंधु जापान मास्टर्स टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु ने महिला सिंगल्स के पहले दौर में थाईलैंड की बुसानान ओंगबाम रुंगफान को सिर्फ 38 मिनट में 21-12, 21-8 से पराजित किया। लेकिन पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन मलेशिया के लियोंग जुनहाओ के खिलाफ अपना पहला मैच हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। लक्ष्य इस मुकाबले में 22-20, 17-21, 16-21 से पराजित हो गए। शूटिंग में ओलंपियन ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और संजीता दास ने आज दिल्ली में विश्व विश्वविद्यालय निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। ये भारत का प्रतियोगिता में तीसरा स्वर्ण पदक है। पुरुष 10 मीटर एयर राइफल में 5वें स्थान पर रहने वाले और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में रजत पदक जीतने वाले ऐश्वर्य आखिरकार स्वर्ण पदक अपने नाम करने में सफल रहे। उन्होंने और संजीता ने किम हयोबिन और ली जुनहवान की दक्षिण कोरिया की जोड़ी को 17-15 से हराकर शीर्ष स्थान हासिल किया।
और और श्रोताओं, अब समय है उन व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज पुण्यतिथि है। इस क्रम में सबसे पहले हम याद कर रहे हैं भारतीय पुरातत्व वैज्ञानिक गुलाम याजदानी को। हैदराबाद राज्य में वो एक विशेष विभाग के संस्थापक थे। सन 1959 में गुलाम याजदानी को विज्ञान और अभियांत्रिकी क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
हेक्टर ह्यूग मुनरो मास्टर ऑन दिस डे इन 1870, पॉपुलरली नोन बाय हिज पेन नेम साकी and also frequently as H.H. Munro, he was a British writer whose witty, mischievous and sometimes macabre stories satirized Edwardian society and culture. He is considered by English teachers and scholars a master of the short story and is often compared to O. Henry and Dorothy Parker. Influenced by Oscar Wilde, Lewis Carroll and Rudyard Kipling, Munro himself influenced A.A. Milne, Noel Coward and P.G. Woodhouse.
और आज ही पुण्यतिथि है भारतीय फिल्म निर्माता दाटला वेंकट सूर्य नारायण राजू की। उन्हें तेलुगु सिनेमा और बॉलीवुड में अपने काम के लिए जाना जाता है। उन्होंने तेलुगु फिल्म उद्योग को चेन्नई से हैदराबाद स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए रघुपति वेंकैया पुरस्कार, भीष्म पुरस्कार और 2001 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
बीएम गफूर पास्ड अवे ऑन दिस डे इन 2003। ही वाज एन इंडियन कार्टूनिस्ट एंड कॉमिक आर्टिस्ट। He was one of the most prominent cartoonists from Kerala and was one of the founders of the Kerala Cartoon Academy. And within a career of more than 3 decades, he created some of the most popular comics, including the social satire Kunjamam.
और अब याद कर लेते हैं उन महान व्यक्तियों को जिनकी आज जयंती है। इस क्रम में सबसे पहले याद कर रहे हैं प्रसिद्ध प्रगतिशील कवि के रूप में जाने जाने वाले गजानन माधव मुक्तिबोध को। आज उनकी जयंती है। मुक्तिबोध हिंदी साहित्य की स्वतंत्रोत्तर प्रगतिशील काव्यधारा के शीर्ष व्यक्तित्व थे। हिंदी साहित्य में सर्वाधिक चर्चा के केंद्र में रहने वाले मुक्तिबोध कहानीकार भी थे और समीक्षक भी थे। उन्हें प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का एक सेतु भी माना जाता है। मुक्तिबोध हिंदी संसार की एक घटना बन गए थे, कुछ ऐसी घटना जिसकी ओर से आंखें मूंद लेना असंभव था। उनका एक निष्ठ संघर्ष, उनकी अटूट सच्चाई, उनका पूरा जीवन सभी एक साथ हमारी भावनाओं की केंद्रीय मंच पर सामने आए और सभी ने उनके कवि होने को नई दृष्टि से देखा।
ज्ञान मुखर्जी पास्ड अवे ऑन दिस डे 1956। ही वाज एन इंडियन फिल्म डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर हु वर्कड इन हिंदी सिनेमा, बेस्ट नोन फॉर द हिट्स झूला 1941 एंड किस्मत 1943। मुखर्जी स्टार्टेड हिज करियर विद न्यू थिएटर्स इन कलकत्ता एंड सब्सिक्वेंटली जॉइन बॉम्बे टॉकीज एज अ सुपरवाइजिंग टेक्नीशियन। Soon he became a trendsetter of the formula film, starting with the first directorial venture, Geeta, in 1940, based on the theme Crime Doesn't Pay. Boy Meets Girl was used in Jhula in 1941. In 1943, he reused the formula of Geeta to direct the biggest hit of his career, Kismat, in 1943, which also had another formula of Lost and Found, which remained popular for several decades in Hindi films.
और कहानी सम्राट प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार और गद्य गीत लेखक राय कृष्णदास की आज जयंती है। उन्होंने भारत कला भवन की स्थापना की थी, जिसे वर्ष 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय को दे दिया गया। आज भारत कला भवन शोधार्थियों के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। राय कृष्णदास को साहित्यिक वाचस्पति पुरस्कार और भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण की उपाधि प्रदान की गई थी।
Yes, and Gerard James Butler was born on this day 1969. He's a Scottish actor and film producer. After studying law, he turned to acting in mid-1990s with small roles in productions such as Mrs. Brown and James Bond film Tomorrow Never Dies and Tale of Mummy. He was cast as Eric in The Phantom of Joel Schumacher's 2004 film adaptation of the musical The Phantom of the Opera with Emmy Rossum. It earned him a Satellite Award nomination for Best Actor. And also Mukesh, Juhi Chawla Mehta was born on this day in 1967. She is an Indian actress. She established herself as one of the leading actresses of Hindi cinema from the late 1980s through the early 2000s. Recognized for her comic timing and vivacious on-screen persona, she is the recipient of several accolades, including 2 Filmfare Awards. After winning the 1984 Miss India Beauty Pageant, Chawla made her acting debut with a brief appearance in the Hindi film Sultanate in 1986. And had a breakthrough role in the tragic romance film Kayamat Se Kayamat Tak in 1988, which earned her the Filmfare Award for Best Female Debut.
Hum bhi akele, maza aa raha hai.
तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुकेश कुमार और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर। नमस्कार।